పురుష ప్రకృతే పదా కేవలను భావనంద స్వరూప సర్వ బుద్ధి దేక్. వైష్ణవ భక్తుల కి జన్మాష్టమి ఏక బహుత్ హి శుభ అవసర హై, క్యోంకి యే వో శుభ దిన హై జబ్ కి పరమ భగవాన్ ప్రకట్ హుయే థే ఇస్ పృథ్వీ పర్. సాధారణ భాషా మే జన్మాష్టమి కే ద్వారా లోక్ క్యా మానతే హై, భగవాన్ కా జన్మదిన హై నా. సాధారణ వ్యక్తి సే పూచో కి జన్మాష్టమి కా క్యా అర్థ, వో కహెంగే భగవాన్ కా జన్మదిన. ఆప్ ఔర్ హమ్ జన్మ లేతే హై, పర్ పరమ భగవాన్ జన్మ నహీ లేతే. పరమ భగవాన్ శ్రీజా మే హమ్ అప్నే ఆప్ కో ప్రకట్ కర్తే హై, ఔర్ అప్నే ఆప్ కో ప్రకట్ కర్తే హై అప్నీ ఇచ్ఛా కే అనుసార్. ఆప్ ఔర్ హమ్ జన్మ లేతే హై కర్మక్ పర్ ఆధారిత్, కర్మక్ కే అనుసార్ కర్మ నా దైవ నైత్రే నా జంతు దేహో పపతయే, కర్మక్ కే ఆధార్ పర్ హమే అలగ్ అలగ్ ప్రకార కా ధ్యేయ ప్రాప్త హోతా హై. తో పరమ భగవాన్ పర్ కర్మక్ కా కోయి ప్రభావ నహీ, అప్నే హీ ఇచ్ఛా కే అనుసార్ వా అప్నే ఆప్ కో అలగ్ అలగ్ రూపో మే ప్రకట్ కర్తే హై, ఔర్ భగవాన్ కే లియే కోయి కిసీ రూప్ మే భీ ప్రకట్ హోనా అసంభవ నహీ హై. జైసే కి నరసింహదేవ్ భగవాన్ కే రూప్ మే వో ప్రకట్ హుయే ఆధే పురుష ఆధే ఇన్సాన్ కే రూప్ మే. తో పరమ భగవాన్ స్వయం ప్రకట్ హోతే హై ఔర్ ఉన్కా భావ సదా ఏక్ హీ రహతా హై. పారితనయ సాధు నామ వినయచర్య దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనా సాయ సంభవామి. భారత్ మే లగ్భగ్ హర్ ప్రాణీ హర్ హిందూ ప్రాణీ ఇస్ శ్లోక్ సే పరిచయ హై. తో భగవాన్ ప్రకట్ హోతే క్యూ, ధర్మ కే నియమో కి స్థాపనా కే లియే. ధర్మాం జో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, ధర్మ కా అర్థ హై భగవాన్ కి వాణీ. तो परम भगवान अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं. यहाँ इस श्लोक में वासुदेव उच्चारण कर रहे हैं, परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं वासुदेव ने कहा, हे भगवान आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं. तो भगवान जो हैं भौतिक जगत से परे हैं, जैसे कि भगवान अभी प्रकट हुए कुछ लोग पहले ही, इस श्लोक से कुछ लोग पहले ही भगवान प्रकट हो चुके हैं. और भगवान प्रकट हुए क्या, चार हाथों के साथ, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म चार हाथों में था. छाती सजी थी शिवत्स मणि के साथ, फिर कस्तुबा मणि गले में उन्होंने पहना हुआ था, पीले रंग के रेशम के वस्त्र पहने हुए थे, और सिर का ताज सजा हुआ था वैदुर्य मणि से. इन मणियों को आप जवेरी बाजार में नहीं खरीद सकते. जिस मणियों के साथ भगवान सजे थे किसी सोने चांदी की दुकान में नहीं खरीद सकते. कहाँ प्राप्त कर सकते हो, कहाँ कौन से, केवल वैकुंठ धाम में इन मणियों को प्राप्त कर सकते हो. तो भगवान सजे हुए थे इन सब मणियों के साथ, और वासुदेव देवकी ने जब ये देखा तो उनके मन में कोई शंका नहीं रही कि परम भगवान प्रकट हो चुके हैं. पर उनके प्रकट हो चुके हैं तो उनके मन में एक भय पैदा हो गया. क्या था भय, कि कहीं कंस को यह सूचना जैसे प्राप्त होगी किसी प्रकार का नुकसान नहीं आ जाए. महान आचार्यों ने कहा है कि भगवान भय रहित है, वो डरे नहीं कंस के जेल खाने में अपने आप को प्रकट करने से. उन्हें पता था कि कम्स उनके पीछे रहेगा, प्रयास करेगा उनको नष्ट करने के लिए, जब भी वो डरे नहीं। फिर भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, जिसके द्वारा माता पिता को बिना शंका के ये पता लग गया अब भगवान प्रकट हो चुके हैं। और वासुदेव ये तो भगवान के उपासक थे, 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने इतनी भारी तपस्या की कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल आप भक्त लोग एक दिन के लिए निर्जल रखोगे, हाँ आप क्या मानोगे, अरे बहुत भारी कमाल कर दिया हमने। हाँ? अगर आपको कहा जाए अगले दिन भी निर्जल रखो तो शायद आप में से बहुत कम भक्त रख पाओगे, है कि नहीं। पर वासुदेव देवकी ने 12,000 सालों के लिए बहुत भारी तपस्या की, खाने के लिए केवल जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से, सूखे पत्ते वो खाया, और हवा, ताजी हवा। आजकल तो पोल्यूटेड हवा है, उन दिन में ताजी हवा प्राप्त होती थी। और उनका चिंतन क्या था, उनका चिंतन एक ही था, एक ही विषय कि हमें परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में, ये थी उनकी इच्छा। और भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, यही वासुदेव देवकी पहले प्रकट हो चुके थे प्रश्नि और सितापा के रूप में, कश्यपा और अदिति के रूप में, वह प्रकट हुए हैं ये वासुदेव और देवकी के रूप में। तो परम भगवान जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, शायद आप जानते होंगे। आज आप किसी तीर्थ के स्थान में जाओ, हम हरिद्वार खास करके, आपको अनेक महात्माओं के नाम दिखेंगे जिनके नाम के साथ जोड़ दिया है भगवान, भगवान 108 और यहाँ क्या नाम। भगवान शब्द किसके लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ, ऐश्वर्य समग्र वीर यशाशा ज्ञान विराग्या वचा व सन्न भागा इतने नाम, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो एक साथ असीम मात्रा में, उसी को भगवान कहा जाता है। हाँ, प्राश मुनि जी के अनुसार सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा त्यागी और सबसे वीर, जिसमें ये 6 के 6 ऐश्वर्य हो एक साथ, उसी को हम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भौतिक संसार में आप देखोगे कोई खूबसूरत है तो धनी नहीं है, कोई धनी है तो वीर नहीं है, वीर है तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है तो त्यागी नहीं। पर भगवान में 6 के 6 ये गुण एक साथ प्राप्त होते हैं। तो वासुदेव इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप जो हो इस भौतिक जगत से पार हो और आप परमात्मा हो, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में उपस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से रजना तिष्ठते, आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हो। आपकी स्थिति मेरी सब तो भगवान के विषय में आप कैसे समझ सकते हो, भक्ति योग के माध्यम से। श्रीमद् भागवत में ये निर्णय किया गया है भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा भगवान को समझ सकते हो, यही निर्णय है श्रीमद् भागवत गीता का, यही निर्णय है चैतन्य चरितमृता का कि भक्तियों के माध्यम से अपन भगवान को समझ सकते हो। तो परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृतया चेतन चरित में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं आप ही हो परम भगवान और बाकी सब जो है क्या है उनके दास है। बाकी देवता देवियां कौन है उनके दास और दासियां है। इसीलिए इसी विचार को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया गया है इस श्लोक के साथ। ब्रह्म संहिता की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, आप जो हो आप हो हर चीज के कारण। अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में भी कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण और राम तो कल्पना है। कुछ महीने पहले एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता ने क्या कहा, कृष्ण एंड राम आर ओनली इमेजिनेशन, वेयर इज द प्रूफ, कृष्ण और राम केवल कल्पना है, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है उसका शास्त्र में, इसके अलावा प्रमाण है अब आज भी ये स्थापित हुआ है कि द्वारका में भगवान के अनेक महल थे वगैरह। तो कृष्ण भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, साधारण लीला नहीं। आज के वातावरण में जो व्यक्ति ये दावा करते हैं वो भगवान के अवतार हैं। अगर आप उनसे ये निवेदन करो आप भी कोई अद्भुत लीला का नमूना दिखाओ तो नहीं दिखा पाएंगे। भगवान क्या प्रकट करते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और इस अद्भुत लीला की तुलना कोई देवता देवी भी नहीं कर सकते। एक और समस्या हमारे देश में ये है, हमारे समाज में हम सोचते सारे भगवान एक ही हैं, किसी रापन पर भी चलो एक ही परिणाम प्राप्त होगा। तो शास्त्र में इस बात का विरोध किया जाता है और श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। अब जैसे हमने कहा भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं और ये अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रकट की थी, भगवान राम ने भी प्रकट की थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी प्रकट की थी और हर अवतार में भगवान ये अद्भुत लीला को प्रकट करते हैं। तो भगवान की तो अनेक लीलाएं हैं जिनके विषय में आप ज्ञान प्राप्त करते हो श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के प्रथम अध्याय में कहा गया है हमें भगवान की लीलाओं का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए और अगर गुरु परंपरा के द्वारा आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आप इस ज्ञान को ठीक रूप से समझ पाओगे। जैसे कि उदाहरण के लिए शुकदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं 10वें स्कंध में। पहले 9 स्कंदों में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, पहले दूसरे स्कंद में भी है संक्षेप रूप में, फिर आगे के स्कंदों में और गहराई के साथ इन अवतारों का वर्णन आपको प्राप्त होता है। वो 10वें स्कंद में जाकर शुकदेव गोस्वामी ये स्थापित करते हैं कि परम भगवान कैसे प्रकट हुए और परम भगवान कैसे प्रकट हुए, देवताओं ने किस प्रकार से प्रार्थना की भगवान को प्रकट होने के लिए और फिर किस प्रकार भगवान ने अपनी अनेक लीलाओं का पालन किया। तो जब आप अब लीलाओं के विषय में पढ़ोगे तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि कृष्णात्यु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान कौन है, स्वयं परम भगवान है। जब वासुदेव देवकी ने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, अक्सर इस प्रकार के शुभ अवसर पर व्यक्ति दान देता है और उस समय पूरा समाज निर्भर था खेती और गायों की सुरक्षा के ऊपर। आजकल तो हमने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए हैं, तो उस समय समाज की सफलता मापी जाती थी ये देखकर कि व्यक्ति के पास कितनी खेती है और कितना कितनी गायें हैं। तो वासुदेव ने 10,000 गायें जो सजी हुई थी गहने के साथ चांदी के साथ दान में दे दिया ब्राह्मणों को, खुशी में कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। भगवान प्रकट हो चुके थे, पर वासुदेव को डर क्या था, देवकी को क्या डर था कि कहीं कंस को ये सूचना प्राप्त हो जाए तो वो हमारे बेटे के पीछे पड़ जाएगा। तो बड़े सुंदर स्तुतियों के साथ वासुदेव देवकी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया। आप श्रीमद् भागवत में क्या देखते हो, भगवान के गुणों का वर्णन किसके द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा। और सुंदर स्तुतियों में भगवान का गुणगान करने के पश्चात माता ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि तुम साधारण बच्चे का रूप धारण कर लो। क्योंकि माता क्या सोच रही थी, मुझे तो बेटे को छुपाना पड़ेगा, अपनी पत्नी देवकी के जान को बचाने के लिए वासुदेव ने कंस को यह वचन दे दिया था कि तुम्हें भय क्यों है, जो भाई बेटा पैदा होगा वो मैं तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम चाहो तो उसे जिंदा रहने देना, नहीं तो मार देना। पर जब भगवान प्रकट हुए, देवकी सोचने लगी अब हमें यह वादा पालन नहीं करना, मैंने भगवान को छुपाना है। और उन्हें अगर छुपाना था जो चार हाथों के साथ दिव्य रूप में जो प्रकट हुए थे, छुपाना बड़ा कठिन हो जाता। तो इसलिए देवकी ने भागवतम के अनुसार पुत्र से क्या विनती की, तुम साधारण बच्चे का रूप धारण कर लो। तो जैसे ही माता का ये ने कहा, भगवान ने एक साधारण बच्चे का रूप धारण कर लिया। तो जैसे हम कह रहे थे, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, इसलिए उन्हें कहा जाता है अचिंत्य। वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। अंगनि यस्य सकलेन्द्र प्रतिबन्धि, आप और हम किसी एक अंग से एक ही प्रकार का कार्य कर सकते हैं। आपने देखना है तो आंखों से, सुनना है तो कानों से। भगवान आंखों से खा सकते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। कंस को सूचना मिल गई थी, भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो कंस ने एक राक्षसी जिसका नाम क्या था, पुतना, पुतना को भेजा। कंस ने मंत्रियों को उसकी सलाह की कि सुना जाता है कि वो कृष्ण प्रकट हो चुका है, अब क्या किया जाए, मेरी जिंदगी को खतरा है अभी। तो असुर ने क्या कहा, जितने बच्चे पैदा हुए पिछले कई दिनों सबको मार दो। तो इस प्रकार की बुद्धि थी उनकी। तो पुतना आई थी अपने आप को सजा कर गोकुल में, और इतनी अच्छी तरह सजी हुई थी कि माताओं को, यशोदा माता को कुछ शक ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये तो अच्छे घराने की औरत दिखती है, अंदर प्रवेश करने दिया। और पुतना का क्या भाव था, अपने स्तन में उसने जहर लगाया हुआ था और उसका विचार था ये छोटे बालक को उठाकर स्तन द्वारा दूध पिलाने का प्रयास करेगी तो दूध के बहाने बच्चा क्या करेगा, जहर पी लेगा। तो असुर जो है अपने आप को बड़ा होशियार मानते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि भगवान में, भगवान सब कुछ समझ जाते हैं, भगवान हरे के हृदय में उपस्थित है परमात्मा के रूप में। तो भगवान ने जब देखा पूतना राक्षसी आ रही है उनके पास, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना जब उठाया स्तन द्वारा दूध पिलाने के लिए, जहर पिलाने के लिए, उसका क्या परिणाम हुआ कि पूतना का जीवन समाप्त हो गया। और वो इतनी भारी थी, उसमें कई योगिक सिद्धियां थी वो, और इतनी भारी थी कि जब वो गिरी 12 मील में जो पेड़ थे सब पर गिरी, सब नष्ट हो गए। जब यशोदा माता सबने देखा ये घटना, उन्होंने कहा क्या सौभाग्य हमारा, क्या सौभाग्य हमारा बेटा बच गया। ऐसे अनेक घटनाएं हुई। फिर थिनावर्ता एक वर्ल्डविंड का रूप लेकर धारण किया था, कंस का तो एक एक धंधा था किसी प्रकार से कृष्णा का वध करना है, और वो अनेक असुरों को भेजते गया हाँ उनका वध करने के लिए। ये जो असुर है इन लीलाओं को पढ़कर आपका भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, और जो हमारे में अनेक कमजोरियां हैं ये कमजोरियां भी नष्ट होंगी। ठाकुर भक्तिनोद जी ने एक लेख में कहा है किस प्रकार से अलग अलग असुरों का वध सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो हमारी कमजोरियां हैं, अनर्थस हैं, वो दूर होंगे। और कहा गया है कि जो व्यक्ति ये कथा पढ़े किस प्रकार भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया, इसके द्वारा आपके हृदय में भगवत प्रेम अनुकूल होगा। तो इसीलिए इन लीलाओं का वर्णन है। बाकी शास्त्र में कहा गया है गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर। हाँ, तो वैदिक शास्त्र में कहा गया कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने विशाल हैं। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो कंस का तो यही भाव था किसी रूप से कृष्णा का वध किया जाए, तो उन्होंने भेजा था थिनावर्ता को भी, है ना। थिनावर्ता ने क्या रूप धारण किया था, वर्ल्डविंड हिंदी में चक्रवर्ती हवा। यशोदा माता रसोई बना रही थी, दूध उबाल रही थी, उन्होंने अपने बेटे को रखा था पास में, बेटा आस्ते आस्ते भारी हो रहा था। जब बच्चा पैदा होता है तो हल्का होता है, जैसे उम्र बढ़ती है बच्चा वजन में बढ़ते जाता है, तो यशोदा माता के लिए भी भगवान को उठाना ज़्यादा कठिन हो गया था। तो उन्होंने बेटे को पास में बिठा कर दूध उबाल रही थी, भोजन तैयार कर रही थी। एक और राक्षसी आया, राक्षस थिनावर्ता, क्या चक्रवार के रूप में, उसे पहले इतना धूल छोड़ा कि कोई पड़ोस, आप पड़ोसी को भी देख नहीं पाओगे। और फिर भगवान को उठाया, भगवान ने शुरू में अपने आप को इतना हल्का बना दिया, घास इतना हल्का। थिनावर्ता का क्या विचार था, भगवान को उठाकर ऊपर हवाई जहाज जैसे ऊपर 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 जाकर फेंक देना। असुर अपने आप को बड़ा होशियार समझते। तो जब उसने इतनी धूल छोड़ दी थी कि यशोदा माता देख नहीं पाई कि मेरा बेटा कहाँ है। जब यशोदा माता ने देखा इतनी धूल है, उन्हें दिखना नहीं है कि कहाँ है बेटा, वो इतनी बेचैन हो गई, निराश हो गई, दुखी, कहाँ है मेरा बेटा। पर बेटे को किसने उठा लिया था? नामवर्ता ने। जैसे हमने कहा, जब पहले उठाया तो भगवान ने उन्हें अपने आप को इतना हल्का बना दिया, घास जैसे। घास को उठाने में क्या कठिनाई। तो जैसे वो ऊपर गए गए गए, भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्ता राक्षस उठा ही नहीं सका। राक्षस ने कहा, ये तो बहुत भारी, ये तो पत्थर बन गया, पहाड़ बन गया। और अंत में तृणावर्ता ही गया। तो भगवान कुछ मिनटों पहले थे घास जितने हल्के, और मिनटों में क्या हो गए, पहाड़ जितना भारी। तो जब यशोदा माता ने देखा किस प्रकार भगवान बच गए, वो बड़ी प्रसन्न हुई। जो ब्रजवासी थे उन्हें ये पता नहीं था ये स्वयं भगवान है। भगवान अपनी योगा माया शक्ति के द्वारा अपने साथियों को ये समझ नहीं देते कि वो स्वयं भगवान है। जैसे भगवान अपनी महामाया शक्ति के द्वारा हमें अपने आप को भुला देते हैं। महामाया शक्ति के द्वारा हर व्यक्ति कहाँ आता है भगवान की कृष्ण किशोर में। जन्माष्टमी इतना शुभ अवसर है, एक रूप से भारत के हर हिंदू, हर प्राणी को आना चाहिए मंदिर पर। सब थोड़ी आएंगे, कई तो जन्माष्टमी वाले दिन भी शराब पियेंगे, मांस खाएंगे। ये थोड़ी कि जन्माष्टमी वाला दिन डिक्लेयर हो गया वेजिटेरियन डे, नो लिकर डे वगैरह, है ना। जैसे गांधी जी के जन्मदिन को डिक्लेयर करते नो लिकर डे। तो जन्माष्टमी वाले दिन तो बस कई जो भक्त भक्ति भावना के वो आएंगे, जो बाकी है वो नहीं आएंगे। तो ब्रजवासियों ने जब देखा यशोदा माता नंद महाराज ने, वैसे उन्हें सूचना थी कि लड़का कोई साधारण लड़का नहीं होगा। गाग मुनि जो ज्योतिष शास्त्र में बड़े होशियार थे, उन्होंने नामकरण करते हुए ये कहा, कह दिया था कि लड़का साधारण नहीं है, अलग अलग युगों में प्रकट होता है, अलग अलग रंगों के साथ, और अनेक सूर आएंगे जो कि इस बालक पर का वध करने का प्रयास करेंगे। तो जब इनका सेना ये भगवान बचे तृणावर्ता से, तो ब्रजवासियों को लगा कि हमारे बेटे पर लगता है नारायण की खास कृपा है, ये कहीं देवता तो नहीं है। पुतना आई, एक और रथ था अभी तृणावर्ता, वो तो उनका जो प्रेम है ये बढ़ते गया। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। भगवान ने एक और बड़ी सुंदर लीला प्रकट की। एक समय यशोदा माता ने कहा कि मुझे शिकायत आई है कि तुमने मिट्टी खाई है, हमारे घर में क्या दूध की कमी है, क्या हमारे घर में दही की कमी है, हमारे घर में क्या मक्खन की कमी है, तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो भगवान ने तो कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मेरे भाई और उनके साथी खेल में हार गए थे और आपके द्वारा मुझे दांत दिलवाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपसे झूठी शिकायत किया है। क्या है झूठी शिकायत? कि मैंने मिट्टी खाई है। यशोदा माता तो सोच रही थी हमारे घर में हर चीज है, मेरा बेटा मिट्टी को खाए, खाना तो मक्खन खाए, दूध खाए, दूध पिए। तो भगवान ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैंने क्या खाया है, तो बोलो तो मैं मतलब मुंह खोल के दिखा देता हूँ, और क्या प्रमाण मिल सकता है। आप मुझे डांट रहे हो कि मैंने मिट्टी खाई है। तो मां ने कहा ठीक है, खोलो मुंह, मैं देखना चाहती हूं अंदर तुमने अंदर क्या है। जब बेटे ने अपने मुंह को खोला तो माता ने क्या देखा, क्या देखा? पूरे विश्व का दर्शन, पूरे विश्व का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। आप जब मुंह खोलते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जी कहते हैं मुंह खुला है, तो उन्हें क्या दिखता है? केवल बलगम। जब भगवान ने मुंह खोला तो उसने क्या माता जी को, माता को देखा? पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन, सारे देवता, कैसे तीन गुणों का प्रभाव होता है, कैसे हमें कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हें ये पूरे विश्व का दर्शन प्राप्त हुआ। और जब ये दर्शन प्राप्त हो रहा था तो सोचने लगी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। कई बार आपको सपना आता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे संभव है? तो फिर माता ने बेटे को अपने गोद में लिया। तो भगवान ने एक पूरे विश्व का दर्शन दिया, कैसे? अपनी माता को। और पूरे विश्व का दर्शन लेकर माता आश्चर्यचकित हो गई थी, क्या ये संभव है? भगवान ने अपने विराट रूप नहीं प्रकट किया था किसके लिए? विराट रूप पकड़ किया था, किसको दर्शन दिया था विराट रूप के माध्यम से? अर्जुन को। पर उस विराट रूप को प्रकट हो करने, इस दर्शन देने से पहले भगवान ने अर्जुन को खास दिव्य नेत्र दिए, जिसके द्वारा वो विराट रूप का दर्शन ले सके। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने विराट रूप का दर्शन दिया था एक समय। तो परम भगवान ने अपने मुंह में पूरे विश्व का दर्शन दिया, किसे? अपनी माता को। जब आप ये भगवान की अद्भुत लीलाओं को पढ़ोगे तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि कृष्ण भगवान कौन है। यशोदा माता ने एक समय भगवान को बांधने का प्रयास किया था, क्यों? पड़ोस की औरतें शिकायत कर रही थी कि आपका बेटा हमारे घर में आकर मक्खन चुराता है, दूध चुराता है, घी चुराता है। ये कथा हम दामोदर के महीने में अक्सर करते हैं और दामोदर का प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, जिसमें बड़े सुंदर रूप से इस पूरे कथा का वर्णन किया गया है। तो यशोदा माता सोच रही थी कि शायद मेरे बेटे को मेरा मक्खन अच्छा नहीं लगता, शायद मेरे बेटे को पड़ोस के मक्खन में ज्यादा टेस्ट मिल रहा है। वो ऐसे तो जब वो दूसरी औरतें आरोप लगाती थी कि आपका बेटा आ रहा है हमारे घर में मक्खन वगैरह चोरी करने के लिए, यशोदा माता कह देती थी मेरा बेटा तुम्हारे घर में क्यों आएगा? क्या मेरे घर में मक्खन की कमी है, मेरे घर में दूध की कमी है, मेरे घर में घी किसी चीज की, दही की कमी है? पर मन में सोचती थी शायद मेरा बेटा वहां जा रहा हो, क्योंकि पड़ोस का मक्खन हमारे मक्खन से शायद ज्यादा मीठा हो। तो जब मक्खन निकाल रही थी, साथ में गीत गा रही थी भगवान के लीलाओं का, क्योंकि भगवान ने अद्भुत लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। और उनका प्रयास क्या था इतना मीठा मक्खन बनाए कि मेरे बेटे पड़ोस के मक्खन के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं हो। और उन दिनों में भागवत में कहा गया है गायों के द्वारा अलग अलग सुगंध का दूध मिलता था, आज गायों के द्वारा मैंने कहा मैं भी जर्सी गाय का जाओ एक ही सुगंध का एक ही प्रकार का दूध मिलता है, पर आपको अगर अलग अलग फ्लेवर चाहिए तो आपको वनीला स्ट्रॉबेरी कुछ ऊपर डालना पड़ता है ना। पर उन दिनों में भागवतम के अनुसार गायों द्वारा अलग अलग सुगंध का दूध मिलता था। देखो हम बड़ा घमन करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। तो यशोदा माता दूध में मक्खन निकाल रही थी इस भाव से कि मेरे बेटे को इतना अच्छा मक्खन दिया जाए कि पड़ोस में जाने की उसकी इच्छा नहीं हो। कई बार जब पड़ोस की गोपियां आती थी शिकायत करने तो माता कहती थी तुम छुपा क्यों नहीं देते मक्खन को, तो मेरा बेटा ढूंढ नहीं पाएगा। तो पड़ोस की गोपियों ने कहा हम छुपाते हैं जब भी वो ढूंढ लेता है, अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। कैसे अंधेरे में कैसे ढूंढ लेता है, क्योंकि जो गहने उसने पहने हैं उन गहनों से इतनी रोशनी प्रकाशित होती है कि वो देख लेता है कहाँ है मक्खन। फिर यशोदा माता कहती थी बोलो तो मैं गहने निकाल देती हूं, फिर वो ढूंढ ही नहीं पाएगा मक्खन का है। फिर कहती थी ये गोपियां नहीं ना नहीं मैं वो गहने मत निकालो, गहनों के साथ ये बड़ा सुंदर दिखता है। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, किस प्रकार भगवान ने मटकी को तोड़ा, एकांत में जाकर मक्खन खा रहे थे और किसे खिला रहे थे मक्खन, ये जो ब्रज के जो बंदर भी हैं बड़े भाग्यशाली हैं। आज जो बंदर आप देखते हो ब्रज में कौन है, वो है जो कि जिन्होंने ऋषि मुनि के रूप में जन्म लिया था तो फिर चापलूसी करके कुछ गलत कार्य भी किया था जिसका परिणाम क्या हुआ, ब्रज में ही जन्म लेते हैं पर बंदर या किसी और रूप में, पर भाग्यशाली हैं धामवासी हैं। हमारे एक महान आचार्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी, जो जब प्रसाद खाने बैठते थे पहले कुत्ते बिल्लियों को बुलाकर उन्हें खिलाते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा महाराज जी लोग सोच रहे आप पागल हो गए हो, अपनी थाली से आप उनको खिला रहे हो कुत्तों को पहले। तो जगन्नाथ दास बाबू जी ने कहा तुम जानते नहीं ये जो पशु हैं ये कौन है, ये है धामवासी। धामवासी क्यों, इन्होंने धाम में जन्म लिया है। तो यशोदा माता को इतनी शिकायत आ रही थी, साथ में उन्होंने मटका भी तोड़ दिया था, तो उन्होंने सोचा थोड़ी सजा देने दो मेरे बेटे को। सजा किस रूप से किस माध्यम से, मुझे उसे बांधने दो रस्सी के साथ। माता ने सोचा थोड़ी सजा दूंगी तो बेटा ठीक हो जाएगा फिर शरारत नहीं करेगा। तो माता ने सोचा कि मुझे रस्सी से इसे क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। तो माता ने अनेक रस्सियों को जोड़ा। कहा जाता है कि ब्रज में जितनी रस्सियां थी सब प्राप्त कर ली, सबको जोड़ा। पहले एक रस्सी ली, एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया तो देखा ओह दो उंगली छोटी, फिर दूसरी रस्सी को जोड़ा तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं छोड़ते गए, हमेशा रस्सी दो उंगली छोटी निकली। फिर यशोदा माता के चेहरे से पसीना निकल रहा था और जो पड़ोस की गोपियां थीं वो इस लीला को देख रही थी और पड़ोस की गोपियां हंस रही थी, कह रही थी देखो शी सो यूजलेस शी कैन इवन टाई हर सन डाउन। यशोदा माता इतनी बेकार की है कि एक बेटे को भी बांध नहीं सकती इतनी रस्सियों के साथ। तो भगवान ने देखा कि मेरी मां इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए। आगे भगवान ने यह भी देखा कि दूसरी गोपियां जो हैं मेरी मां की हंसी उड़ा रहे हैं क्योंकि मेरी मां मुझे बांध नहीं पा रही। तो मां बेटे ने सोचा बांधने दो मां को मुझे, और बेटे ने मां को बांधने दिया। तो इस कथा से हमें ये संदेश भी मिलता है कि अगर हम प्रयास करें भगवान को प्राप्त करने के लिए, अगर हम प्रयास करें भगवान को समझने के लिए, तो भगवान हमें योग्यता देंगे, भक्ति बुद्धि देंगे जिसके द्वारा हम भगवान को समझ पाएंगे। इंग्लिश में कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ, भगवान किनका सहयोग करते हैं जो स्वयं प्रयास करें। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा अर्जुन तुम विश्राम करो और मैं युद्ध में लड़ूंगा तुम्हारे लिए। भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो उसी प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की शिक्षा का पालन करने के लिए, भगवान के संदेश का पालन करने के लिए, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कई बार हम सुनते हैं लोग कहते हैं भगवान को हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, हम सोचते हैं हमने धर्म के नाम पर आपको अपना लिया दीक्षा ले ली सो गॉड शुड बिकम आवर ऑर्डर सप्लायर। जो ये हमारी इच्छा है उसको पूरा करना भगवान का कर्तव्य बनता है, पर हमारा भाव होना चाहिए भगवान की इच्छा हमारी इच्छा, ये नहीं हमारी इच्छा भगवान की इच्छा। अगर आप इस भाव के साथ चलोगे कि भगवान की इच्छा आपकी इच्छा, फिर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। अगर आप सोचोगे हमारी इच्छा भगवान की इच्छा होनी चाहिए, फिर आप भक्ति के मार्ग में कभी स्थिर नहीं बनोगे। आज संतुष्ट कल निराश, पर अगर आप ये मानोगे कि हम सबका एक ही कर्तव्य है जिवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास, हम सब क्या है परम भगवान के सेवक, और हम सब भगवान के सेवा में जुड़े रहेंगे तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। तो यशोदा माता भगवान को बांध पाई, क्यों? क्योंकि भगवान मान गए, भगवान ने देखा मेरी माता इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, तो अंत में क्या कहा मुझे बांधने दो। ये कथा लंबी है, हम तो केवल आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। नारद मुनि एक समय गुजर कर जा रहे थे, उनका परिचय हुआ कुबेर के पुत्रों के साथ, नल कुंवारा और मणिग्रीवा। कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची। अब अंदाजा लगा सकते कितने धनी होंगे देवताओं के खजांची। तो उनके दो पुत्र हैं नल कुंवारा मणिग्रीवा, दो बेटे वरुण ने शराब पी थी, शराब के नशे में स्त्रियों की संगत में खेल रहे थे पानी में मंदाकिनी नदी में, और जब संत नारद जी वहां पहुंचे। नारद जो कि हर व्यक्ति को भगवान देता है, जो स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने नंगे शरीर को ढक दिया, तो ये इतने शराब के नशे में थे ये समझ ही नहीं पाए। संत जो है जब किसी को डांटता भी है तो किस लिए डांटता है, उसकी भलाई के लिए। जो कार्य करता है दूसरों की भलाई के लिए। तो नारद मुनि ने देखा इन दो भाई जो नशे में है, नारद मुनि ने सोचा मुझे इनका उद्धार करने दो। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आप देवताओं के 100 वर्षों के लिए क्या बनोगे, वृक्ष। कहा? न्यूयॉर्क में, लंदन में। कहा? वृंदावन में नहीं, नंद महाराज के आंगन में, है ना, नंद महाराज के आंगन में। फिर साथ में उन्होंने एक वर भी दिया था कि 100 सालों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो जब नारद मुनि ने देखा कुबेर के बेटे इतने बदतमीज हैं, भूल गए अपने स्वरूप को, उन्होंने सोचा कि मुझे इनको कुछ शिक्षा देने दो। तो उन्हें श्राप दिया जिसके कारण उन्हें वृक्ष का रूप धारण किया नंद महाराज के आंगन में। भगवान खेल रहे थे। यशोदा माता ने उनको पिछले अध्याय में बांध दिया था कि किसी और भगवान भी मान गए थे कि उन्हें बांध दो। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त ने ये वर दिया है, उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो भगवान पिता के आंगन में थे, जो मोटर है दो पेड़ों के बीच में फंस गया था, भगवान ने खींचा। जब खींचा तो क्या, दो बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरे और वो बड़े पेड़ों से क्या निकले, दो खूबसूरत युवक। ऐसे देखा कि वो वैकुंठ धाम से आ रहे हैं। इन युवकों ने भगवान को प्रणाम किया, नारद मुनि जी का आभार प्रकट किया क्योंकि नारद मुनि जी की कृपा से ही उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा कि अब से हमारी इच्छा है कि हम नेत्रों के द्वारा आपके दिव्य रूप का दर्शन करें, पैरों द्वारा आपके मंदिर में चल के जाएं, हाथों द्वारा आपके मंदिरों को साफ करें, कानों द्वारा आपके गुणगान सुने और जीव द्वारा उनका गुणगान करें। तो ये जो दो कुबेर के बेटे थे उनका उद्धार कैसे किया भगवान ने। जब ये दो बड़े पेड़ गिरे, मान लो हमारे हरे कृष्ण लैंड में तो इतने बड़े पेड़ नहीं है, पर अगर गिरे में तो बड़ा भारी आवाज होगी। जब ये दो बड़े पेड़ गिरे, सारे ग्वाले और यशोदा माता जो रसोई में थी उन्होंने भारी आवाज सुनी, फट। यशोदा माता भागी भागी आई, क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने देखा दो पेड़ गिर गए। तो उन्होंने पूछा कि पेड़ कैसे गिरे, और वो पेड़ यशोदा माता की पहली चिंता थी कहीं पेड़ों के गिरने से मेरे बेटे को तो चोट नहीं लगी। उन्होंने पूछा पेड़ कैसे गिरे, तो ग्वालों ने कहा ये पेड़ आपके बेटे ने गिराए। उनका मोटर अक्ल फर के फंस गया था दो पेड़ों के बीच में, उन्होंने गिराया, मेरे बेटे ने पेड़ गिराए, इम्पॉसिबल, असंभव। वो छोटा लड़का वो कहां से इतने बड़े पेड़ों को गिरा सकता है, मुझे विश्वास नहीं। कभी आप कहते हैं ना, आई डोंट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं करती कि मेरे बेटे ने गाए। भगवान के दोस्तों ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपके बेटे ने ही दो पेड़ों को गिराया, तूफान के कारण दो पेड़ नहीं गिरे, आपके बेटे ने इन दो पेड़ों को नीचे खींच कर गिरा दिया। जब भी ये सुधा माता को विश्वास नहीं हुआ, वो कह रही थी देखो भगवान की क्या कृपा, हमारा बेटा बच गया। वो पेड़ अगर बेटे पर गिरते तो बेटा खत्म हो जाता, हमारा बेटा बच गया। और भगवान ने छोटे से आयु में क्या इतने दो महान पेड़ों को गिराया। एक समय तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है नहीं, तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा उनके प्रिय भक्त ये पहचान नहीं सकते कि उनके दिव्य स्वरूप को। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। एक समय एक औरत सेब बेच रही थी, वैसे आजकल वो कहते हैं फल वाला फल वाला, तो सेब बेच रही थी। सेब बेचते बेचते भगवान के घर में आई, भगवान को सेब चाहिए थे। तो आजकल तो अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको रुपया डॉलर यूरो देना पड़ता है, पर उन दिनों में ये रिवाज नहीं था। इन दिनों में रिवाज था क्या, बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम मतलब आप कुछ दो वस्तु, उसके बदले में वस्तु लो। तो भगवान के हाथों में अन्न के दाने थे, भगवान ये अन्न के दाने लेकर जा रहे थे इस फल वाली को अन्न के दाने देने के लिए, और बदले में क्या प्राप्त करने वाले थे भगवान, फल। पर छोटे से थे, हाथों में इतनी ताकत नहीं थी, फल वाले वाली तक पहुंचते पहुंचते सारे दाने गिर गए थे। फल वाली ने सोचा, अरे भाई दाने तो सब गिर गए, अब मैं फल दू या नहीं। वो बड़ी प्रभावित थी भगवान की खूबसूरती के साथ, तो उसने कहा ठीक है ले लो। उसने फल दे दिए बिना कुछ बदले में लिए लेने के साथ। जब उस फल वाली ने मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी जो टोकरी है किससे भर गई है, उसकी टोकरी भर गई है सोने के सेवों के साथ। उसने दिए साधारण सेव और भर गए क्या, सोने का सेव। इससे क्या संदेश मिलता है, भगवान की शरणागत होकर कभी कुछ नुकसान नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। कई बार हम सोचते हैं हम अपना जीवन देंगे भगवान को, हम हमारी जवानी देंगे भगवान को, हम हमारा समय देंगे भगवान को, हम धन देंगे भगवान को, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, है ना। आपको असली सुख मिलेगा जब आप आपका ध्येय देते हो वाणी बुद्धि धन, आपको इसके बदले में लाखों गुना लाभ मिलेगा। तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष जो आज का उत्सव है, इस शुभ अवसर पर आप भक्तों को यह निर्णय करना चाहिए कि हमने इस जीवन को समर्पण करना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पण नहीं करोगे तो कहां करना पड़ेगा, माया की शरण में। माया की शरण में सेवा करोगे तो केवल माया आपको किक करते जाएगी, पैर मारते जाएगी, है ना। और कभी आप यहां पहुंचोगे कभी वहां पहुंचोगे। दृढ़ होकर हमें भगवान के शरणागत होना है। और भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक नियम दिए गए हैं, विधियों का वर्णन है, परंतु में कहा गया है कि इन सब नियमों का उपदेश क्या है कि आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण का मतलब क्या है? आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के नामों का गुणगान करो, भगवान के उपदेश का स्मरण करो, भगवान की इच्छाओं का स्मरण करो। मन में किसी न किसी प्रचार का विचार तो रहेगा, तो मन में कौन से विचार रखो? वही विचार जिनके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में, खास करके 10वें स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है। और भगवान की बाल लीला के पश्चात आगे जाकर भगवान की रास लीला का वर्णन है। दूसरे शब्दों में, जब आपके मन में कोई शंका नहीं हो कि परम भगवान कौन है, जब आपको रास लीला सुननी चाहिए। ये नहीं कि आप खुद जुड़े हो इंद्र तृप्ति में और आप सोचते हो रास लीला सुनेंगे, हम भी उस लीला की नकल करेंगे। आपने उस लीला की नकल करनी है तो पहले आप अपना विस्तार करो। भगवान ने अपने आप को 16108 रूपों में विस्तार किया था और भगवान हर गोपी के साथ एक साथ उपस्थित है। आपको चलो छूट दे देते हैं, 16108 मत करो, एक ही डुप्लीकेट बना लो अपना। भगवान ने तो 16000 रूपों में विस्तार किया था, आप खाली एक डबल बना लो अपना बस। तो आप नहीं कर सकते, तो जब आप में ये योग्यता नहीं है तो रासलीला की नकल करने की कोई अधिकार नहीं है। और रासलीला में जो गोपियां हैं, क्या था इनका भाव? केवल भगवान की सेवा। भगवान ने उद्धव से कहा एक समय, मुझे सिर दर्द हो रही है, ये सिर दर्द दूर होगी केवल मेरे भक्तों के चरणों की धूल के द्वारा। मुझे भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। जैसे आपको सिर दर्द हो तो आप टाइगर बाम लगाते हो, तो भगवान ने कहा मुझे भक्तों के धूल का बाम चाहिए। तो उद्धव जी गए ज्ञानियों के पास, योगियों के पास, सबसे ये कहा भगवान को आपके चरणों की धूल चाहिए। ब्राह्मणों के पास, ज्ञानियों के पास, सबने इनकार कर दिया। हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे में लगेगा, जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो हम हमारे चरणों की धूल नहीं दे सकते भगवान के सिर दर्द को दूर करने के लिए। जब उद्धव जी पहुंचे गोपियों के पास, उन्होंने बिना चिंता के कहा लो लो लो, हमें केवल विष्णु की प्रशंसा, कृष्ण की प्रशंसा चाहिए, हमें अपने स्वार्थ की चिंता नहीं। उन्हें ये चिंता नहीं थी हम नरक में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं, उनको एक ही चिंता थी कि हम कृष्ण भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये जो गोपियों का भाव है, ये सबसे ऊंचा भाव है। पर इसे समझने के लिए हमें हमारे अशुद्ध इंद्रियों बुद्धि को शुद्ध बनाना है, जो कि संभव है भक्तियों के साधन के द्वारा। तो आप सब भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए, भगवान की लीलाओं का अध्ययन कीजिए, भगवान के नामों को अपनाइए और निरंतर भगवान का स्मरण कीजिए। और इस प्रकार प्रयास करोगे तो आप भक्ति योग के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो जन्माष्टमी का असली भाव यह है कि हम और गहराई के साथ परम भगवान का गुणगान करें। और ये संभव है अगर आप हरि नाम करो, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करो। इस प्रकार आपका मन स्थिर बनेगा और आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आप सब तैयार हो इसके लिए? कौन कौन तैयार है? सब। कई बार लोग कहते हैं हमें भागवत प्रेम चाहिए, पर हमारे से कुछ त्यागने के लिए हमें मत कहना। हमें ऐसा गुरु चाहिए, ऐसी संस्था चाहिए जहां पूरी छूट हो। अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो तो भगवान क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओ का अर्थ है उनके आदेश का पालन करो। तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमने केवल उस कार्य का पालन करना है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे हमें क्या करना है, बचना है। और जितने गहराई के साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे उतने ही गंभीर तेजी के साथ अब भगवान के शरणागत हो पाओगे। श्री कृष्ण जन्मति माम अथव की हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? तो भक्तों से विनती है वो कीर्तन करें, जो जो सेवा दी गई है उसका पालन करें, और हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। मैंने क्लास आज दी, असल में कल देना था, और कल मैं जा रहा हूँ इसलिए आज के लिए। Wanted, young man, take it. ठीक है ना? नहीं कल सही, पहले कल सुबह
What are you doing?